गुणों के गान वे वर्धमान महान है हमारे ध्यान कल अपन ने तीन और तीन गाथाएं पढ़ी थी, तीन का एक ग्रुप था और तीन इन दोनों में क्या अंतर है, क्या गंभीरता से और बारीकी से विचार करो। हमको तो ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है कि पहले ये कहा था कि बंध को, उसके उदय को, उसकी विच्छुक्ति को, उसकी काल की मर्यादा को और सब चीजों को डिटेल जानने से बंध का नाश नहीं होगा। और दूसरी गाथा में ये कहा, दूसरी तीन में, तीन के ग्रुप में ये कहा था कि बंध के चिंतमन से और बंध की मुक्ति, बंध नहीं कटेंगे, बंध के चिंतमन से बंध नहीं कटेंगे। तो क्या फर्क रहा, पहले मैं जानने से कहा और दूसरे में चिंतमन से कहा, और वो भी बहुत बारीकी से ध्यान देना कोई तो उसे मालूम पड़े, ऊपर ऊपर से पढ़े तो वही मालूम नहीं पड़े, ऐसा लगे कि बेई गाथाएं पढ़ रहे हैं, अथवा गुरुदेव जी का प्रवचन हो, किसी का प्रवचन सुन रहे हो तो ये लगे कि बराबर ये रिपीट कर रहे हैं। वही बात कल कही थी, वही आज कह रहे, वही परसों कही थी, लेकिन इसमें अंतर हो गया क्योंकि उनका जो विचार है ना, वो चिंतमन, वो धर्म ध्यान का भेद है। आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, समझे ना, और जानना एक ज्ञान की क्रिया है। तो पहली तीन गाथाओं में उनके ज्ञान से बंध का छेद नहीं होगा, और दूसरी तीन गाथाओं में ये कह रहे कि उनके ध्यान से बंध का छेद नहीं होगा। अभय जी घर पे देखना, गंभीरता से जाके इसको देखना, तो आपको बहुत स्पष्ट ख्याल में आएगा क्या। और इसीलिए उनने कहा कि आज्ञा विचय, अपाय विचय, विकार विचय, संस्थान विचय, ये चार प्रकार का जो धर्म ध्यान है। तो आप ये कह सकते हो कि चिंतमन का तो कहा है हमको, अब हम क्या करें, शुक्ल ध्यान तो इस काल में होता नहीं, तो हम धर्म ही ध्यान करेंगे ना। तो वो कहते हैं ये तो भैया व्यवहार धर्म ध्यान है, निश्चय धर्म ध्यान तो कि प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त आत्मा को करकर पर से भिन्न आत्मा को जानना ये ज्ञान है, और उसको ही जानते रहना, चाहे वो चिंतमन रूप हो और वो चाहे ज्ञानात्मक रूप हो, वो प्रक्रिया है। जो अपनी बारह भावना लिखी ना, बारह भावना एक अनुशीलन, तो उसमें मैंने अकलंग देव का एक कोटेशन दिया है, और आप उसमें ध्यान से पढ़ेंगे, उस बारह भावना अनुशीलन का कम प्रचार हुआ है, तो गुजराती में अनुवाद भी नहीं हुआ है, हो गया तो क्षति तो नहीं, हमारे हाथ में नहीं आई दिया है, लेकिन वो बहुत सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। वो उसमें ये लिखा है हमने अकलंग देव का उद्धरण देकर के, कि जब तक ये चीजें विचारात्मक रहती हैं तब तक ये बारह भावनाएं हैं, और जब ये ज्ञानात्मक हो जाती हैं उसका नाम धर्म ध्यान है। आपको ख्याल में है ये बात, अब देखना उसमें जा, अनुवाद तो आपने ही किया होगा ना, तो ये बात अब देखना जाकर के आप हैं, आपको है ख्याल में, चलो एक गवाह तो मिला। क्या है कि बहुत बारीक भेद है कि चार अनियोगों का अध्ययन हो गया ना, इसको उन्होंने व्यवहार धर्म ध्यान कहा, और इसको तो चिंतनात्मक ही बताया, अब वो अकलंग देव इनको बारह भावना में भी यही चिंतमन होता है। देखो समुदय राज उतंग नव लोक पुरुष संस्थान ये आ गया तो ये आप संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। ये बारह भावनाओं को पढ़ेंगे तो चारों धर्म ध्यान निकल सकते हैं उनमें से है? आप समझे ना, गंभीरता से हम विचार करेंगे तो चारों प्रकार के धर्म ध्यान निकलेंगे। तो वो जब तक ये विचारात्मक और ज्ञानात्मक क्या होता है इस बात को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। वैसे मैंने यहां इसकी चर्चा पहले की है लेकिन बहुत दिन हो गए होंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा तो उससे आपको ख्याल में आ जाएगी कि यहां चर्चा हुई थी। हिंदू धर्म में एक अजपा जाप होता है, नाम सुना अजपा जाप। ये अजपा जाप क्या है कि जैसे जाप करते हैं तो उसमें जपना पड़ता है, अपन नमोकार मंत्र जपते हैं, कोई भी राम राम का नाम जपे राम 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 राम, तो इसे जाप बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाथ में माला ले लेते हैं और एक थैली ये बांध लेते हैं, देखी होगी, और थैली बांधकर उस माला को बदलते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं राम 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 राम। तो वो थैली क्यों बांधी कि वो हाथ से कभी माला छूट जाए तो जमीन पे गिर जाएगी तो उसका अपमान होता है ना? तो वो छूट जाए तो जमीन पे नहीं गिरे, इसलिए वो थैली बांधते हैं। अब वो कहते हैं कि ये हमारा अजपा जाप है। क्या अजपा जाप माने क्या कि हम मुंह से राम 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 बोल रहे हैं ना, तो मुंह से हमारा राम 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 बोलना बंद भी हो जाए तो अभी हमारे एकदम धारा बहती रहती है राम 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 की ज्ञान में, और यहां उंगलियां चलती रहती हैं, वो यहां गुड़िया बढ़ता रहता है। तो वो कहते हैं कि बिना जपे का जाप, अजपा माने जपा नहीं, जपना माने मुंह से बोलना, राम 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 ये बोले ये मुंह से बोलना होगा। अब मुंह से बोलना तो बंद हो जाए, और अभी तो एक भेद और पड़ेगा जैनियों में, अभी उसमें उनका समझ लो, और सिर्फ उनके यहां तो मन में चलती रहे वो बात, उसे वे कहते अजपा जाप, क्योंकि हमने जपा नहीं और जाप अंदर से चल रहा है। तो अब उसकी उनने ये दुर्दशा की है कि वे आपसे बातें करते रहेंगे, गप्पे लगाते रहेंगे, कहां से आए, अच्छे हैं, बाल बच्चे ठीक हैं, और वो उनका अजपा जाप चल रहा है, और बीच बीच में राम 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 भी कहने लगेंगे और वो माला भी चलती रहेगी, और आपसे कुशल क्षेम भी पूछेंगे क्यों, और उसमें भी क्रिकेट के मैच में अभी क्या चल रहा है, कितने रन किसने बनाए हैं, कौन कौन आउट हो गए, वो भी पूछते रहेंगे, और उनका अजपा जाप चलता रहेगा। ये दुर्दशा उनने की, और उनका असली रूप वो है जो मैंने आपको बताया, क्या कि वो हमारा जबान रुक भी जाए, हम सो जाए तो सोते में भी वो ज्ञान में राम 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 चलता रहता है, है ना? तो उन्हीं के लोगों ने मजाक भी उड़ाई है कि वो राम राम का कभी कभी मरा मरा भी हो जाता है, जल्दी जल्दी वो ना तो राम वो मरा 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 तो क्या फर्क रहा, बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ तो। अब ये तो उदाहरण दिया मैंने, अब सिद्धांत कि अपने भी के वचन से बोल रहे और काया से वो गुड़िया बढ़ा रहा है आगे, चाहे माला पर चाहे उंगली चलाओ, तो एक काया वाला और वचन वाला जाप हुआ, मन भी इसमें है ही। अब धीरे धीरे क्या होगा कि एक हाथ रुक जाएगा, वो माला रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन वाणी चलती रहेगी, और धीरे धीरे वाणी रुक जाएगी लेकिन मन में चलता रहेगा, और अब कहते हैं कि धीरे धीरे मन भी रुक जाएगा, मन पावे विश्राम, और वो चीज ज्ञान के लेवल पे चलती रही, उसका नाम है ध्यान। धारा प्रवाही, इसका नाम व्यवहार ध्यान है, क्योंकि वो रिपीटिशन का नाम ध्यान है, ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। पर ये उसमें लिखा है समय सार में, वो 34वीं गाथा में नानम नीवा मुड़ी दब्बम है ना गाथा, उसे ज्ञान ही जानो, तो ज्ञान की स्थिरता तो ही ध्यान है ना, लिखा ना। तो अभी आत्मा का ध्यान तो वो कब कहलाएगा, आत्मा तो उसका विषय है, और जब मन वचन का तीनों उसमें से हट गए, वस्तु विचारत ध्यावते और मन पावे विश्राम, उसके पहले वचन विश्राम पाएगा, उसके पहले काया विश्राम पाएगी, और रस स्वादत फिर वो अतिंद्रिय आनंद का रस आ जाएगा तुम्हें, जिसे अपन कहते हैं आनंद की कनका जग जाती है, अब सुख उपजे अनुभवता को नाम, तो वो ये प्रक्रिया है। तो इसमें से वो जो आरंभ मन वचन काय की प्रक्रिया है उसको ये व्यवहार ध्यान कह रहे हैं, और वो जो ज्ञानात्मक रह जाएगी उसको निश्चय धर्म ध्यान कह रहे हैं, और शुक्ल ध्यान भी ऐसा ही होता है, पर उसकी काल अवधि अधिक होती है और वियोग काल कम होता है, होता ही नहीं वियोग काल, वो तो श्रेणी में होता है ना, और गहराई ज्यादा होती है, और इसमें बार बार छूट जाता है, फिर हो जाता है, फिर छूट जाता है, इसलिए अपन इनको धर्म ध्यान बोलते हैं, वो चीज एक ही है, समझे ना, इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहे जाते हैं, और पंचम काल में मुख्य रूप से धर्म ध्यान ही होता है, इसलिए जो लोग कहते हैं कि पंचम काल में सदुपयोग होता ही नहीं तो फिर धर्म ध्यान रहेगा क्या, आप समझे ना, तो यही है। लेकिन वो जो श्रेणी में बोलते हैं सातवें गुण स्थान के बाद, वो लोग वो शुक्ल ध्यान की बात करते हैं तो वो तो अभी होता ही नहीं है, और वो तो दो तरह का होता है कि एक उपशम श्रेणी वाला, एक छपक श्रेणी वाला, तो उपशम श्रेणी वाला लौट के भी आता है, और छपक श्रेणी वाला तो लौटता ही नहीं है, फिर तो वो अनंत काल तक के लिए उसमें चला जाता है, ख्याल में ना। तो ये जो शुक्ल ध्यान के दो पाये होते हैं वो उस श्रेणी में होते हैं, बाकी के दो पाये तो तेरहवें गुण स्थान में उधर होते हैं। तो अभी ये बात यहां पर एक कह रहे हैं कि उससे तेरे कर्म कटेंगे, बंध का अभाव उससे होगा, और मैंने कल आपको कहा था कि जगत के लोग कहते हैं कि लिखो इसमें क्या लिखा, अब तुम पढ़ते रहोगे, घुमर साल पढ़ते रहोगे, समय साल पढ़ते रहोगे, भले ही इसमें विपाक विचय नामक धर्म ध्यान की बात कही हो, लेकिन बात तो चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान की है ना, तो उसमें आपका अध्यात्म भी आ जाएगा, आत्मा की बात भी आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है वो तो क्योंकि बंध अधिकार चल रहा था इसलिए उनने उसको खास कह दिया, और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो समझ लो कुंदकुंदाचार्य इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त उसका बहुत जोर था करुणानियोग का, हेल में ही ना, ऐसे मैंने कहा, हमने कहा हमेशा रहा, इसलिए भी वो बात आई होगी, लेकिन उसका आशय वो ही चारों अनियोगों से है। आप तत्व का अभ्यास कर रहे हैं और वो मन वचन का एक जिसमें सक्रिय है, तब तो वो व्यवहार नाम पाएगा, क्योंकि वो पराधीन है ना, मन वचन काय की क्रिया उसमें शामिल है, वो प्योर आत्मा का नहीं है ना, ध्यान का ध्येय ज्ञान का ये भी आत्मा बने और जानने वाला भी आत्मा, दूसरे का रंच मात्र भी सहयोग नहीं चाहिए, नहीं रहे वो असली धर्म ध्यान है वो, आप समझे ना, तो वो उसका तो यहां समर्थन कर रहे। वो छठवीं गाथा में, छठवीं तो समझ गया ना, पांच की थे अंत में ये बीज उन्होंने डाला था ना, पढ़ना भी छठवीं पढ़ दो, जो निज को निज स्वभाव को जाने और बंध के स्वभाव को जाने, और बंध के स्वभाव से विरक्त हो पर आत्मा में रत हो, तो इससे वो तुम्हारा काम होगा कर्म बंधन के नाश का अभाव का। खैर मैं इनमें इसमें बीज डाल दिया, अब इसमें गुरुदेव का भी बहुत अच्छा अच्छा कोटेशन है, मैं थोड़ा निकाल के आपको बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। देखो Mm-hmm. पेज नंबर 119 है ना इस किताब में, समय सार अनुशीलन में निकल गया ना। इस संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, विशुद्ध धर्म ध्यान का अर्थ है शुभ भाव, जो कि पुण्य बंध का कारण है। इसे ही आगम में अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं, है ना? धर्म ध्यान शब्द जरा अटपटा लगता है, परंतु यहां यह नाम व्यवहार धर्म ध्यान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नियम सार में आया है कि निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान दोनों भिन्न भिन्न हैं। शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो शुद्धता प्रकट होती है यह निश्चय धर्म ध्यान है, तथा कर्म आदि की चर्चा और विचारधारा रूप पर के लक्ष्य से जो शुभ भाव होता है यह व्यवहार धर्म ध्यान है। वर्तमान में लोगों में अधिकांश यह बात चलती है कि शुभ भाव से धर्म होता है, परंतु भाई शुभ भाव निश्चय से तो अर्थ ध्यान रूप है, यह धर्म ध्यान तो हो भी कैसे? देखो ना, यह स्पष्ट कहा है, विशुद्ध धर्म ध्यान में से जिसकी बुद्धि अंध है, शुभ भाव में से धर्म मानने वाले, शुभ भाव से बंधन का छूटना मानने वाले अंध हैं, ऐसा कहा है। देखो भाई, जो शुभ भाव में कंठ निमग्न हो गए हैं, उन जीवों को यह खबर नहीं है कि अतीन्द्रिय ज्ञान व आनंद का पिंड स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हम स्वयं हैं और वे अंध बुद्धि है ना। देखो, ये बहुत स्पष्ट गुरुदेव की वाणी का है ना, यद्यपि ये सब मैंने लिखा है, फिर भी मैं यहाँ आपके पास प्रवचन करने आता हूँ तो उसके पहले दो दो दफे, तीन तीन दफे सब पढ़ के आता हूँ, समझे ना? मेरे कहने का मतलब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता ज्यादा, आप ज्यादा पढ़ूंगा तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए आप जिनको बहुत तीव्र विकल्प हो इससे सुनने का कि गुरुदेव ने कहा कि नहीं कहा, वे घर पर पढ़ें, थोड़ा नमूना बता देता हूं मैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ऐसा मान के चलो वो अक्षरशा पूज्य गुरुदेव श्री की है, मेरे पास और कहां का माल है, दूसरी जगह का माल है ही नहीं। मैंने बरसों से कोई दूसरों को पढ़ा ही नहीं है, करीब मुझे जयपुर में 45 साल हो गए, ये दशहरे के दिन पूज्य गुरुदेव श्री सोनगढ़ में 45 साल रहे थे ना, 45 साल का कोर्स मेरा पूरा हो गया दशहरे के दिन, ख्याल में ही ना। मैंने उस दिन प्रतिज्ञा की थी जगदीश भाई कि मैं जिंदगी में अब दिगंबर शास्त्रों के अलावा और कुछ पढ़ूंगा ही नहीं और पढ़ाऊंगा भी नहीं, और उसे मैंने बहुत गहराई से निभाई है। अखबार पढ़ना छोड़ देना उसमें यदि कोई बात है, कहा समझ गए ना। लेकिन मैंने आत्म कल्याण की भावना से यही किया है, और उसमें से 90% पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन की बात होगी। अब सोचो भी, मैंने 7000 से ज्यादा पृष्ठ कुंद कुंद की वाणी पर लिखे हैं, ऐसे ऐसे, और 15000 पृष्ठ का मैंने संपादन किया है गुरुदेव की वाणी का, प्रवचन रत्न कर रहे ना सब हिंदी के सब किए हैं मैंने, तो अभी इसमें ही लगा रहता हूं मैं तो, इसे दूसरा माल मेरे पास आएगा कहां से? आप ऐसा दिमाग में विकल्प रखकर कि ये तो डॉक्टर साहब की बात है, उसको थोड़ा श्रद्धा को डाउन करके मत सुनना, नहीं तो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आप तक पहुंचेगी नहीं, है ना? और मैं सब पेट खोल के कह देना चाहता हूं, क्योंकि अब कौन कहेगा और हम भी कहेंगे तो अब कब कहेंगे? किनारे पे आ गए ना, क्यों? और लोग ज्यादा दिखाई नहीं देते होंगे, बैठे होंगे, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूं, है ना, लेकिन हम किसके लिए छोड़ें और कब के लिए छोड़ें, इसलिए वो बात मैं सब कह देना चाहता हूं, आप उसे सुनो। तो ये जिनवाणी के स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रहे हैं, इसको निषेध नहीं समझना, चारों अनियोग के स्वाध्याय में किसी को भी। लेकिन असली देशना लब्धि क्या है, क्योंकि त्रिकालिद्र भगवान आत्मा का स्वरूप और उसके आसपास का परिकर, बस वो ही असली देशना लब्धि है। वे हमको द्वादशांग वाणी में से भी छांट कर और असली माल तक लाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो बहुत है, विशाल है, एक एक अनुयोग की का अंत है, कितने उसके छंद है, वे पद कितने हैं भैया, तुम बोलते हो ना पूजा में, वे करोड़ों है ना, आता ना, पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहित 18,000 तो आचारांग में, और फिर सूत्रकृतांग में, और अंत में सबका जोड़ बताया है, वो 1 करोड़ से ऊपर है, करीब 2 करोड़ से थोड़ा ही कम होगा। इतने पद हैं, और पद का मतलब क्या समझते हो, नाम बता दिया, पद माने 2+2+2+2+2+2 ऐसा 64 बार लिखो, क्या समझे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, अब सुन चल रहे ऐसे 64 बार गुणाकार है, गुणाकार चलते हैं, 2 × 2 = 4 नहीं, आप समझ गुणाकार आप समझ लेना, वो है मल्टीप्लाई करते जाओ, और वो 64 बार करो, जो संख्या आए वो एक पद के अनुपयुक्त अक्षर हैं, इतने अक्षर का एक पद, और ऐसे 2 करोड़ के करीब पद, इतना है द्वादश अंग। कोई पढ़ पढ़ कर आजकल सुख केवली नहीं हुआ ना, इतना पढ़ सकता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ लो भैया, गौतम स्वामी के गुरु कौन थे, खबर नहीं, जिसने पहले मेरे से सुन लिया हो कहीं, भी चुप रहना जरा, ज्यादा उछलना मत, क्योंकि मैं कई दफे कह चुका हूं, क्या गौतम स्वामी के गुरु कौन थे, कि ये भी कोई पूछने की बात है। सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नंबर फर्स्ट शिष्य यदि कोई था तो गौतम स्वामी थे, वो इतने महान थे वो, कि उनके बिना भगवान ने दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कोई है ही नहीं सुनने वाला, किसको सुनाऊं, क्यों आता कि नहीं आता, तो महावीर है ना उनके, और मैं कहता हूं नहीं है, बोलो क्यों, अपने शास्त्रों में आपने पढ़ा ना कि जब इंद्र उनके पास गया, उनके पास जाना नहीं चाहिए था ना इंद्र को, वो तो सहायक सम्मत दृष्टि था, ना समझ था चला गया, वो तो गीत मिथ्या दृष्टि थे, वो तो दिगंबर भी नहीं थे, दिगंबर भेष भी नहीं था, श्वेतांबर भी नहीं थे, क्यों क्यों गया जैनों के पास, अपना गुरु बैठा जैन तीर्थंकर, उनके पास गए, उनसे प्रश्न पूछा, जो भी हुआ मैं लंबा नहीं लंबाऊंगा नहीं, और वो आ गए, और मानस तंभ के सामने ही देखा उनने, मालूम आपको, और वहीं वहीं उनको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, मुनि दीक्षा ले ली, चारित्र हो गया, द्वादश अंग के पाठी हो गए, और मन पर ज्ञान हो गया। गणधर देव की इतनी क्वालिटी है, इतना ज्ञान वो पहले लेके बैठे तब वो गणधर देव की गद्दी पे जाके बैठ सकता है, और भगवान की दिव्य ध्वनि उसके बाद खिली है, बोलो, उन्होंने तो बोला ही नहीं जब तक, उनके शिष्य कैसे हो गए भाई, अब उनकी वाणी नहीं सुने और वैसे ही शिष्य हो जाते हो तो हो ही गए, क्यों आप सोचो, ये बात तो बहुत हाथ में रखे आंवले जैसी है ना, कि दिव्य ध्वनि कब खिली, कि जब वो ऐसी उपस्थिति में, अब दूसरा और खतरनाक प्रश्न है कि भगवान की महावीर वाणी से उन्हें क्या मिला सीखने को। क्या क्यों कि जितना श्रुत ज्ञान में जाना जा सकता है वो तो सब जान लिया उनने, एक भी नई बात उसमें उनको जानने में नहीं आई। मैं तो यही कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे, उनकी मैं बिल्कुल अवज्ञा नहीं करता हूं, वे ही मेरे एकमात्र परम गुरु हैं उसमें। लेकिन समझना, मैं समझने के लिए कहता हूं कि कुंद कुंद देव गए थे कहां, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में गए थे भरत क्षेत्र से, क्या सीखे आए? ये उन्हें पहले पता नहीं था कि मुनि कैसे थे वो, ये तो इसके पता के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता भाई साहब। ये जो बात का इसका पता तो उन्हें पहले था, यहां जो सम्यक दृष्टि गए थे समझ गए ना, उन्हें कोई नई बात, कोई और सामान्य गे नए जान लिए होंगे। जो प्रयोजन भूत हैं वो तो उनको पूरे पहले से ज्ञान में थे, वो पहले लिखते चाहे बाद में लिखें समय साल वगैरह कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने श्रीमंदर से सुनकर के सब लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो वैसे ही लिख सकते थे, अन्यथा और जो आचार्य नहीं गए थे अथवा उनने जो पहले साथ लिखे थे वे सब झूठे हो जाएंगे ना। वो महिमा तो है ही, गुरुदेव श्री फरमाते हैं श्रीमंदर परमात्मा का दर्शन उन्हें मिला है, इतना महाभाग्य उनका था, उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और उसमें रंच मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ख्याल में ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने जुर्माने का स्वरूप तो समझो कि क्या है। ये जो तत्व ज्ञान की बात है, मूल मुद्दे की बात, वो तो हर ज्ञानी धर्मात्मा को ख्याल में है, पूज्य गुरुदेव जी के ख्याल में नहीं थी क्या? क्यों? फिर नया नया प्रमेय जानने में आता रहता है तो वो अलग बात है। गौतम स्वामी को तो वो भी नहीं, गौतम स्वामी तो द्वादशांग के पाठी हो गए थे, लेकिन फर्स्ट शिष्य प्रथमान योग में लिखा है, कोई हाँ पर हमने कोई गप थोड़ी मारी। क्यों? अब जो लोग हैं ना ऐसे हो गए, अब हमें क्या सुनना, अब बहुत सुना, अब तो भाई अब तो अपने आत्मा में चले जाओ, बहुत सुन लिया। अभी गुरुदेव के टेप को सुनने से भी ये बात करने लग गए कि क्या सुनना, अब सुन तो हॉल लिया, सुनते सुनते जिंदगी निकल गई, अब तो कुछ करो। अब ऐसा ही हो गया ना, कुछ करो। वे गौतम स्वामी जिनमें अंतर मुहूर्त में गीत मिथ्या दृष्टि से लेकर गंधर्व देव तक की प्रक्रिया पार की थी, वो पढ़ पढ़ के तो नहीं की थी ना, क्या द्वादश अंग के पार ही पढ़ पढ़ के तो नहीं हुए थे ना, सब कुछ जान चुके थे, कुछ भी जानना बाकी नहीं था, फिर भी 30 वर्ष तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली, दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी, तो एक सेकंड की अनुपस्थिति नहीं थी उनकी। जब दिव्य ध्वनि खिलती थी उसके पहले हाजिर रहते थे, और जब पूरी समाप्त हो जाती थी तब उठते थे, बीच में बाथरूम जाना पड़े तो ये बाथरूम एक दिन में 6-6 दफे पीने खाने वालों को आता है बार बार, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं, तो दिन में एक बार खाते पीते हैं उन्हें ऐसा बार बार लेटर बाथरूम नहीं आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके सामने। अब वो सुन रहे थे, सब जानते थे, अब इतने उनसे ज्यादा जानकार हो गए जिन्हें सुनने का विकल्प खत्म हो गया। अरे तेरी कमजोरी के कारण तू नहीं बैठ सकता, तेरा उपयोग स्तर नहीं रखता, कमर में दर्द है, घर धंधे पानी का विकल्प है, तो तू मत बैठ, तू अपनी कमजोरी जनवाणी पे मत थोप कि ये जनवाणी पढ़ने सुनने लायक नहीं है। आप समझे ना, अब इस तरह दिनवाणी किए पठन पाठन की स्थापना करने के बाद अब आचार्य कहते हैं कि अब सुनो कि ये पढ़ने का विकल्प भी खत्म होना चाहिए, ये पढ़ने की क्रिया भी बंद होनी चाहिए, ये मुंह से आवाज निकलना भी बंद होनी चाहिए, ये माला भी बंद होनी चाहिए, मन का विकल्प भी बंद होना चाहिए। तो फिर क्या रह जाएगा? सब गया। क्यों कमल जी? बचा क्या? बेटा अभी पूरा का पूरा आत्मा बचा है ना, इनमें से आत्मा तो कोई था ही नहीं। जिनका निषेध कर रहे हैं उनमें आत्मा था कोई? अब ज्ञान बचा है पूरा। अब ज्ञान भी बंद होना चाहिए। हम कब कह रहे हैं? वो जो जाना है तूने पर से भिन्न आत्मा को, उसको तो रिपीटेशन कह, जानता रहे तो ध्यान हो जाएगा, उसको बंद करने की बात कहां गई? देखो तो जब वो ज्ञानात्मक हो जाए और ऐसी प्रक्रिया निरंतर अपने में होती रहती है। भाई साहब देखो मैं बताता हूं उदाहरण देके। जब आप पहली दफे क्लास में गए थे पढ़ने के लिए, पहली दूसरी क्लास में, तब उनको आपको पहाड़े पढ़ाए थे ना गुरु जी ने, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौको आठ, क्यों? तो पहले आपको देख देख के बोलने पड़ते थे, फिर आपको याद हो गया पहाड़ा। लेकिन हम पूछो दो अट्ठे क्या होता है, तो आप ऐसा बोल दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, ऐसा बोल के और फिर आठ पे जाते थे तब सोलह बता पाते थे, ऐसा होता था ना। फिर धीरे धीरे हम सीधा बताने लग गए, ख्याल में है ना, वो निकल गया ना। अब धीरे धीरे दो को आठ दफे, मैंने आठ को दो दो जगह दो दफे आठ आठ हों, आठ आम इधर हैं और आठ आम और आ जाएं, तो वो हमको बोलना पड़ता दो का पहाड़ है क्या कि ये आम कितने होंगे। देखो उसके बिना बिल्कुल शब्दों को बोले बिना सीधे मन में आ जाते हैं सोलह। अब मन भी आ जाए बीच में फिर ज्ञान में आ जाए वे सोलह, वे ज्ञानात्मक है। ऐसी प्रक्रिया हमारी होती नहीं है, बोलिए। बहुत सी जो हमारी बातें हैं वो एकदम हमारे ज्ञान में सीधी आ जाती है कि नहीं आ जाती हैं? उनमें हमें उस प्रक्रिया से पार होना पड़ता है क्या? और जो कच्चे हैं उन्हें होना पड़ता है, जो कच्चे हैं उन्हें होना पड़ता है। अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं कि तुम वो कैलरी लेते हो हाथ में हिसाब किताब गणित करने के लिए, कैलकुलेटर में तो नाम भी नहीं जानता, वो कैलकुलेटर ले लेकर गिनते फिरते हो, और ये बुजुर्ग लोग एकदम फटाफट एक सेकंड में बता देते हैं, वहां बता देते कि नहीं बता देते, उनके उनके ज्ञान में ये सब आ जाता है। अभी हमारे सब देख देख के कंप्यूटर में देख देख के बताते हैं, और मैं कहता हूं कि ये किताब कितनी है, एक आदमी 500 चाहता है धर्म के दर्शन है तुम्हारे पास, कैसा बहुत है, बहुत है आपको, बहुत है बहुत है बहुत है मत बोलो, कब छपी थी? कि दो साल हो गए तो खत्म हो गई होगी। मुझे पता है कि दो साल में 5000 खत्म हो जाती है, 30 साल से हर साल का उसका 2500 का नक्की है। मैं बोलता खत्म हो गई होगी, देखो जाकर के वहां जाओ उठा के लाके यहां रखो मेरे सामने, तुम कहते हो है बहुत नहीं होगी, छपानी पड़ेगी, जल्दी छपाओ, तुम्हें बता देता हूं। तो कि तुम्हें कैसे, अरे तुम्हें कैसे मालूम रहता है? क्योंकि हम वो कैलकुलेटर नहीं रखते, हम लोग का नाम भी नहीं जानते, हमने कोई कभी खोला नहीं है इंटरनेट इंटरनेट, लेकिन सब दिमाग में रहता है ना। तो ऐसे ही ये बोल रहे, देखो वो ज्ञानात्मक हो जाए, कौन? भगवान आत्मा ज्ञानात्मक हो जाए और फिर वो ज्ञान स्थिर हो जाए, उसका नाम ध्यान है। बोलो बताओ हेमचंद जी, तुम्हारे ध्यान वाले ये बताते हैं? ये ध्यान वाले हो गए और हम ध्यान वाले नहीं है। निर्विकल्प, इतनी सी तो बात है। एक गुरुदेव का मैंने पढ़ा, आप बहुत पढ़ना, बहुत लिखा है इसमें, देखो और पढ़ू गुरुदेव का, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लेना भैया, तुम छोड़ मत देना, क्योंकि पंडित जी ने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं। गाथा निकालो अगली 294वीं गाथा। अब पढ़ो भैया, अच्छे पहले प्राकृत पढ़ना फिर हिंदी पढ़ना। 294 गाथा,
पेज नंबर 126 पुस्तक में। जीवो बंधो यतः छिद्यन्ति च लक्षणैर्निहेरिम् पन्ना छेदनेन तु छिन्नाणाणत्तमावर्ष जीवति जीवतेवं बन्ध निज निज
अभी कहते अभी साधन क्या है, अब हम क्या करें, वो जो तुम कह रहे इससे नहीं होगा इससे नहीं होगा, तो अब करें क्या है ना। तो नयनी का व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा करो, दान दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत पहले छोड़े आए हैं, समझने में जीवन में समय छोड़ देना, जीवन में भूमिका अनुसार रहेंगे क्यों, लेकिन ये साधन नहीं है। श्रीमद् कहा ना बहुत अच्छा, कछु और रहो उन साधन सो अनंत कियो कछु कछु हाथ आयु न लगो। तो वो सब चीजें मत को छोड़ दी, मतलब छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना जीवन शुद्ध सात्विक नहीं रहे, उसका निषेध रंच मात्र भी मत समझना जीवन में। लेकिन यह समझने में तो समझना, क्यों समझने में तो समझना, जीवो बंधो यथा छिद्यति, कि जीव और बंध को भेद दो। कैसे भेद हैं, सलक्षणे ही, उन दोनों के अपने अलग अलग लक्षण हैं। बंध का लक्षण है वो ये है, जे जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण अभी आगे की गाथाओं का अपने पाठ पढ़ा था ना, चेतना, वो चेतना फिर ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, तीन गाथाएं हैं वो बहुत मार में, वो ज्ञान का लक्षण है। वो तीन गाथाएं पढ़ते भैया हैं फटाफट, तू चेतता फिर जानता फिर देखता है ना। हाँ ठीक है बोलो। हाँ चेतता चेतता एक गाथा ऊपर, एक गाथा ऊपर से पढ़ो।
जिस भांति क्या से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति क्या से ही अरे ग्रहण करो इसे, इस भांति क्या ग्रहे की मैं हो गई जो चेतता, अब शेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना, इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो चेतता, अब शेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना, इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो जानता, अब शेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना।
बस तो मैं एक गाथाओं का पाठ इसलिए कराता हूँ, मुझे भी याद हो जाती है, मुझे भी ध्यान में आ जाती है। क्या कह रहे उसने क्या कहा था कि हमने बंध जी है और आत्मा जी है, ये क्या करें, साधन क्या है। तो उन्होंने कहा साधन ज्ञान है, प्रज्ञा छेनी है, बुद्धि रूपी छेनी है, वो साधन है, तो उससे दोनों को अलग अलग कर दो। तो उन्होंने कहा जब छेनी डालते हैं ना अपन तो दो टुकड़े हो जाते हैं, समझे ना, तो ऐसे इन्हें अलग अलग कर दो। अब वो बोला कि ठीक है क्या करें, अब हमने तोड़ दिया अलग अलग, कि अब वो जो हिस्सा बंद वाला है ना उसे छोड़ दो और जो आत्मा वाला है ना उसे ग्रहण कर लो। कि काय से कैसे कर लें ग्रहण, हाँ तो बताओ व्रत से उपवास से ध्यान से कैसे कर लें ग्रहण। तो वो जवाब देते हैं जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही हरि ग्रहण करो। आगे ने क्लियर बात, तो जिससे तुमने अलग किया उसी से ग्रहण करना है, दूसरे साधन नहीं जुटाना है। साधन तो बस एक प्रज्ञा छेनी है, अब साधन बदलने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर जैसा नहीं है कि नीचे नर्स खड़ी रहती है फिर कहता है ये कैंची दे फिर ये दे फिर वो दे देता है फिर दूसरा हथियार देता है ऑपरेशन करता है ना, क्यों डॉक्टर साहब ऐसा होता रहता है ना, ऐसा हथियार देते रहते बताते रहते हैं। ध्यान से शांति से काय की जल्दी है, कहाँ भागना है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से
उस भांति प्रज्ञा छेनी से
ग्रहण कर लिया, आप क्या करें ग्रहण कर लिया आप क्या करें। तो इसकी गाथा अगली बोलो, उसमें बता दिया, सुनना ध्यान से सुनना।
इस भांति प्रज्ञा छेनी में हो वही जो चेतता, अब चेत जो है भाग मेरे नहीं यह जानना।
बोलो बोलो बोलो।
इस भांति प्रज्ञा छेनी में हो
क्या करें, अब बताओ हो गया जे काम के, अब क्या करना है। अनंत काल तक यही करो, ज्ञान में ये जो तुमने जाना है बस अनंत काल तक तुम ऐसा ही जानते रहो, बस कदम। इसी का नाम ध्यान है, वो अंतर मुहूर्त तक कहते तो ध्यान कहते हैं और बाद में वो हो जाता है केवल ज्ञान, तो फिर कहते ध्यान की जरूरत नहीं रही। और थोड़ा बहुत लगा लो तो 14 के अंत तक वो कहते मोक्ष में ध्यान नहीं होता, क्योंकि बस ये रह गया, ये तो माल आया ना बस वो रह गया, वो ज्ञान में रह जाता है नहीं। अब तो काम खत्म हो गया, अब क्या, अब क्या, ये अब क्या क्या करता है ना। एक राजा था, उसकी ऐसी आदत थी कि जो भी फरियादी उसके पास आता था तो वो फरियाद सुनाता था। फिर वो पूछा उसके बाद क्या हुआ, तो फिर बताता है कि वो आया उसने साहब मेरे को चांटा मार दिया, कि उसके बाद क्या हुआ कि मैं रोने लगा, कि उसके बाद क्या हुआ उसने दूसरा जड़ दिया, कि उसके बाद क्या हुआ मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कि उसके बाद क्या हुआ उसने डंडा जड़ दिया, कि उसके बाद क्या हुआ कि साहब फिर कुछ नहीं हुआ, कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, जब कुछ नहीं हुआ तो जा सब लोग बहुत परेशान थे उस राजा से, क्या करे जब तो फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। एक आदमी मेरे जैसा था और वो पूछा मैं महाराज मेरी बहुत बड़ी फरियाद है कि क्या है बोल। कैसा मैंने बहुत बड़ी खेती की उस साल फिर क्या हुआ कि बरसात बहुत अच्छी हुई, कि फिर क्या हुआ कि फसल बहुत अच्छी आई, फिर क्या हुआ कि मैंने फसल काटी और बोरों में भर भर के गेहूं, और एक बहुत बड़ा स्टोर था वो स्टोर में भर दिया। वो स्टोर में एक छेद था, नहीं बने, उसमें से एक चिड़िया आती, एक दाना उठाती और फुर्र से उड़ जाती। फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ हुआ फिर क्या हुआ, चिड़िया फुर्र उड़ जाती है कि फिर क्या हुआ हुआ फिर क्या हुआ चिड़िया फुर्र उड़ जाती है। वो कहे फिर क्या हुआ, बोले चिड़िया एक दाना खाए उड़ जाए फुर्र। कि तेरी ये फुर फुर कब खत्म होगी, कि जब तेरी ये फिर फिर खत्म होगी तब। क्योंकि बहुत बड़े अनाज तो बहुत है ना, अभी तो एक बोरी के दाने खत्म नहीं हुए। क्यों, जब सारे दाने खत्म होंगे तब मेरी ये फुर फुर खत्म होगी। अभी फिर क्या फिर क्या फिर क्या, कि तेरा फिर कब खत्म होगा, अब तू पहुंच गया असली जगह। क्यों, तूने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जान लिया, अब जानता रहे अंतकाल तक बस। यूं चिंतन जे में फिर भाई दिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहिमेंद्र के नाही का, रही है अनंता अनंत काल तथा यथा शिव। अब वे अनंत काल तक जिस रूप में परिणमित हो गए, अनंत काल तक उसी रूप में रहेंगे ना, अब नया क्या होना है। लेकिन ज्ञान गुण अपना काम थोड़ी बंद कर देगा, श्रद्धा गुण अपना काम थोड़ी बंद कर देगा, चारित्र गुण अपना काम थोड़ी बंद कर देगा, उसकी पर्याय तो निरंतर एक प्रति समय होंगी, लेकिन वे एक सी होंगी। फिर इसलिए उसकी फिर बात क्या करें, कोई चेंज आए तो कहानी बढ़े, अब चेंज आना ही नहीं है तो वह कहानी है समाप्त होती है। कहां से शुरू हुई थी, काल अनंत निगोद मझार बीतो केंद्रीय तन धार, यहां से शुरू हुई थी। फिर वहां से निकला, पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, वनस्पति कायक हुआ, प्रत्येक वनस्पति कायक हुआ, फिर तृष हुआ, फिर तृष में दो इंद्री हुआ, तीन इंद्री हुआ, चार इंद्री हुआ, पांच इंद्री हुआ, श्रेणी, फिर श्रेणी, ये सब त्रिंज में, फिर त्रिंज में से निकल के नरक चला गया। अभी जल्दी क्यों आते हो, क्यों, फिर नरक में से निकला तो मनुष्य गति में आ गया, और मनुष्य से निकला तो देव गति में आ गया, और फिर क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, फिर देव एक इंद्रिय हुआ, वहां से आगे के एक इंद्रिय में गया, और फिर वही दुष्चक्र चालू हो गया, परावर्तन, अनंत काल बीत गया। ये पंच परावर्तन करते करते यदि नहीं बिताना हो तो हम बताते हैं कि थोड़ी कहानी को बदल दे, कि पहली पहली ढाल में मैं चढ़ेला की में मत घुमाता रहे, थोड़ी आगे बढ़ने दे, ख्याल में आई ना, तो तीसरी ढाल में आकर के आने दे। प्रतिबिंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन भये थर सम्यक चारित्र सोई। तो एक दफे इसको समझ ले, सम्मादृष्टि हो जा, फिर अनुवृत ले ले, फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, फिर बारह भावनाओं को भा, और फिर 28 मूल गुण धारण करके, और फिर ध्यान में चढ़ जा। क्यों चिंतन ज में थिर भये जन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र। ये भाई कहानी यहां भी खत्म हो सकती है, और दो ही जगह पे जो कहां खत्म, शुरू तो हो गई, और घूमते घूमते तू मनुष्य पर्याय तक तो आ गया। अब आगे की कहानी दोहरा करके देवगति में जाकर, क्यों, और फिर जाकर के एक इंद्रिय में जाना है कि इस मनुष्य भव्य पर्याय की सार्थकता करके और आत्मा में लीन होकर आत्मा का ध्यान करके अनंत काल तक अपने में रहना, उसका नाम ही सिद्ध पर्याय। संसद देखा गुरुदेव ने लिखा है कि सिद्ध दशा माने क्या, ये एक स्थिति है। तो अभी ये अपनी ये गाथा हुई, अभी इस पर और चर्चा अपन थोड़ी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।